ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग पढ़ रहे हैं भगवद गीता अध्याय 4 और श्लोक संख्या 11। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सथैव भजाम्यहम्। ममावर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करते हैं। वैसे हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, भगवान का स्वभाव के बारे में चर्चा हो रही है। नहीं तो जैसे हमने चर्चा की कि ज्ञान योग में भगवान अपने बारे में बता रहे हैं, लोगों के बारे में बताएंगे और फिर ये बताएंगे कि कृष्ण भावना अमृत में क्या विभिन्न विभिन्न कर्म है, करते हैं लोग अलग अलग टाइप के लोग। सो अभी पहले अपने बारे में बता रहे हैं क्योंकि जिसकी हम सेवा कर रहे हैं पता होना चाहिए कौन है। और भगवान ने 9वें अध्याय में बोला था, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं अवैति तत्वतः, जो मेरे दिव्य जन्म कर्म को जानता है उसका दोबारा से पुनर्जन्म नहीं होता। पर इसी श्लोक की व्याख्या, इसी श्लोक को लेके भगवान ने अपने अपना सब ये सारे श्लोक चल रहे हैं जो अपने बारे में बता रहे हैं। सो पिछले श्लोक में मैंने एक चीज नहीं कही थी, बताई थी। अब टॉपिक क्या चल रहा है, टॉपिक चल रहा है कि भगवान अपने बारे में बता रहे हैं। नहीं, भगवान ने कहा देखो भाई, मेरे जन्म और कर्म, दिव्य जन्म कर्म को जो जान लेगा उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। अब भगवान को एक्सप्लेन भी तो करना पड़ेगा कि भगवान का जन्म और कर्म दिव्य कैसे है या उसका मतलब क्या है, उसको थोड़ी डिटेल में भी तो बताना पड़ेगा। और सो भगवान ने अब अपने जब स्वभाव के बारे में बताना शुरू किया तो 10वें श्लोक में हमने बोला कि जो भी राग भय क्रोध से मुक्त है और भगवान की शरण लेता है, जो वो भगवान तक पहुंच जाता शुद्ध होके। अब उस श्लोक के अंदर हमने ये तो बता दिया राग भय क्रोध कैसे हटेगा, वी राग हटेगा क्या कहते हैं गुरु की शरण लेकर, भय हटेगा कैसे संशय निवारण करके, क्रोध हटेगा नियम पालन करके। मगर अब इस श्लोक के अंदर भगवान ने अपना स्वभाव तो बताया ही नहीं, नहीं अगर ध्यान से मतलब हमने बात की कैसे हटेगा, मगर थीम क्या चल रही है, थीम चल रही है कि भगवान अपने बारे में बता रहे हैं। तो फिर अब ये क्या बता रहे हैं श्लोक के अंदर अपने बारे में। सो अगर आप इसका पर्पट पढ़ोगे तो श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जो लोग भगवान को समझने आते हैं, जन्म और कर्म को समझने आते हैं, मैंने बताया था, वो लोग अपने आइडिया से भगवान को समझने की कोशिश करते हैं। तीन तरह के लोग होते हैं संसार में, चार तरह के लोग हैं जो भगवान को समझने की कोशिश करते हैं। एक तो है शुद्ध भक्त जो एज इट इज समझ जाता है और वो पुनर्जन्म से मुक्त हो जाता है, कृष्णा भगवान है और कोई भगवान नहीं है, उनकी भक्ति करना मेरा जीवन का लक्ष्य है और प्रेम प्राप्त करके भगवान के पास चला जाऊंगा, सिंपल हो गया। मगर कुछ लोग हैं, तीन तरह के लोग हैं, वो भगवान को गलत तरीके से समझते हैं। पहला है राग। राग मतलब जो भोगी लोग हैं वो लोग आध्यात्मिक जीवन की उपेक्षा कर देते हैं। ये इस पैराग्राफ की आखिरी लाइन देखो आप, मनुष्य को भौतिक जगत के प्रति आसक्ति की तीनों अवस्थाओं से छुटकारा पाना होता है। ये है आध्यात्मिक जीवन की उपेक्षा। कुछ लोग आध्यात्मिक जीवन की उपेक्षा करते हैं। सो क्यों करते हैं, क्योंकि वो अपने जीवन से आसक्त होते हैं। इसलिए आध्यात्मिक जीवन की उपेक्षा कर देते हैं। भाई कृष्णा के जन्म कर्म दिव्य है मगर ठीक है, हमें कुछ लेना देना नहीं है, ऐसे लोग है ना, वो भोगी लोग हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं राग की बात कर रहे हैं, श्लोक में राग आ रहा है। कुछ लोग राग के वश होकर मुझे त्याग, मेरे को समझना छोड़ देते हैं। कुछ लोग भय के वश होकर आध्यात्मिक सकार रूप का भय तथा जीवन की हताशा से उत्पन्न शून्यवाद की कल्पना करते हैं। आ गया नहीं आ गया? सो कुछ लोग भय के वश होकर भगवान को छोड़ देते हैं। भगवान को क्यों, क्या भय होता है उनको? उनको भय होता है कि उनको इन रूपों से भय लगता है। पता है क्यों? क्योंकि भाई देखो, जब जो भोगी होते हैं, भोगी लोग तो आसक्त होते हैं संसार से। नहीं, संसार क्या है? संसार नाम और रूप ही तो है, और क्या है? अगर भागवत पढ़ोगे, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं नाम रूप से बना है संसार, और क्या है? ये टेबल है, इसका एक रूप है, ये रियूज है, इसका एक रूप है, ये वो आदमी है, उसका एक रूप है, और उसका रूप एक गंदा भी है, अच्छा भी है, नहीं वो सारी चीजें इंक्लूडेड है। सो लोग परेशान हो जाते हैं संसार में रहकर, इतने परेशान हो जाते हैं, वो कहते हैं यार इन परेशानियों से हमें डर लग रहा है, फ्रस्ट्रेट हो गए, ये तो बहुत खतरनाक संसार है। तो करते क्या है, वो इस निष्कर्ष पे आते हैं कि परेशानी का कारण क्या है, ये संसार का नाम और रूप, इस नाम रूप को ही खत्म कर दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। जब रूप ही नहीं है, नाम ही नहीं है, तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व। वो लोग फिर अपना सिद्धांत बताते हैं शून्यवाद, सब कुछ क्या है, शून्य है। वो लोग का सिद्धांत भगवान शून्य है, सुना है नहीं सुना है? बुद्धिज्म, बुद्धिज्म भगवान शून्य है। तो वो लोग भय के कारण भगवान को शून्य बनाते हैं, समझ गए? हम भगवान के बारे में बात कर रहे हैं। और कुछ लोग जो होते हैं वो क्रोध के कारण भगवान को निराकार बना देते हैं, वो भी शिला प्रभुपाद लिख रहे हैं इसके पीछे। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ऐसे लोग, इसके आगे देखो, ऐसे लोग जीवन की रुग्ण अवस्था में होते हैं। कुछ लोग भौतिकता में इतने आसक्त रहते हैं कि वे आध्यात्मिक जीवन की ओर ध्यान नहीं देते। कुछ लोग तो निराशावश सभी प्रकार के आध्यात्मिक चिंतनों से क्रोध होकर प्रत्येक वस्तु पर विश्वास करने लगते हैं। सो कुछ लोग जो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं संसार से, यार बहुत हो गया बस ठीक है। अंतिम कोटि के लोग किसी ना किसी मादक वस्तु का सहारा लेते हैं और उनके मति विभ्रम कभी कभी आध्यात्मिक दृष्टि माना जाता है। सो कुछ लोग पागल होकर या तो भगवान को निराकार बना देंगे, या दिमाग खराब हो गया सब कुछ निराकार, या शराब वराब पी के अपनी कल्पना करते हैं भगवान के बारे में। ऐसे भी होता है ना, कबीले वाले और ये शराब पी के मस्त होकर फिर भगवान एक हिरन है या कुछ है, अपने अपने आइडल्स नहीं बनाते रहते, भूत है ये है वो। तो भगवान बता रहे हैं कि संसार में तीन तरह के लोग राग और भय और क्रोध के वश में होकर मेरे जन्म कर्म की दिव्यता को समझ नहीं पाते और अपनी काल्पनिक कल्पना से मेरे बारे में उल्टा फुल्टा सोचते रहते हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं वित राग भय क्रोधा, राग भय और क्रोध को छोड़ दो। ये कहने का मतलब है अपनी कल्पनाओं को छोड़ दो। मन मैंने वहां उपाश्रित और मेरा उपाश्रित, समझ गए? समझ गए नहीं? इसका मतलब ये भी है श्लोक का। और कैसे छोड़ो वो तो मैंने बता ही दिया आपको, गुरु के पास जाकर संशय का निवारण करके और नियम पालन करके तुम्हें पता लग जाएगा कि भाई मैं कौन हूं। सिंपल सी बात हो गई। अब समझ आया, भगवान अपने स्वरूप के बारे में ही बात कर रहे हैं, इसके अंदर अपने बारे में बता रहे हैं। ओके, अब कृष्णा बता रहे हैं और आगे कि देखो, क्वेश्चन आता है कि भी अलग अलग लोगों को अलग अलग भगवान अलग अलग अनुभूति हो रही है। भगवान अलग लोगों को अलग अलग अनुभूतियां भी देते हैं जो भगवान के पास आते हैं। हर एक व्यक्ति को भगवान के बारे में पता नहीं लगता जो भगवान के पास आता है। अभी भगवान कह रहे मेरे जन्म कर्म की दिव्यता जानो, तो ठीक है हम कृष्ण के पास आ गए और हमें क्या भगवान के बारे में पता लग जाएगा पूरी तरह? नहीं पता लगेगा, जरूरी नहीं है, क्योंकि जो जिस भाव से भगवान के पास आता है भगवान उसी तरह उसको अपने आप को प्रकट कर देते हैं। इसलिए भगवान अगले श्लोक में कह रहे हैं, जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूं। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करते हैं। सो प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण को उनके विभिन्न स्वरूपों में खोज रहा है। प्रभुपाद पहली लाइन में लिख रहे हैं, तो जैसी मेरी शरण लेता है, जैसा भजता है, मैं उसको वैसी अपने आप को प्रकट कर देता हूं। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं व्यक्ति तत्वता, तत्वता वो नहीं जान पाते। इसलिए यहां पे भगवान क्या बता रहे हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब मुझे बताओ। यहां पे भगवान बता रहे हैं कि यहां पे देखो आखिरी लाइन में लिख रहे हैं प्रभुपाद, फलतः कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति की अनुभूति के विषय है, और इस तरह कोई भी और सभी अपने अपनी इच्छा के अनुसार तुष्ट हो जाते हैं। अब जिस रुचि के साथ भगवान के पास जाओगे उसी के अनुसार भगवान अपने आप को प्रकट कर देंगे आपके सामने। प्रभुपाद इसके पपट में लिख रहे हैं, जो यज्ञ करते हैं भगवान उनको भी फल देते हैं, भगवान उनके सामने भी प्रकट होते हैं, क्योंकि भगवान यज्ञेश्वर है ना। और किस रूप में प्रकट होते हैं भगवान उनके सामने, भगवान उनके सामने यज्ञेश्वर के प्रकट होते हैं। जो यज्ञ करते हैं, स्वर की इच्छा करते हैं ना, भगवान से प्रार्थना करते हैं, वो कहते हैं कि भगवान फल दाते हैं, आनंद दाते हैं। नहीं, वो गाना भी तो आनंद दाता, कैसे वो प्रार्थना ही करते हैं ना, हे प्रभु आनंद दाता। नहीं, उनको भगवान लगते हैं, हाँ भगवान सब कुछ देने वाले, वो कन्विंस्ड हो जाते हैं। समझ गए नहीं समझ गए, प्रभुपाद के पपट में ही लिख रहे हैं, जो भगवान से कोई इच्छा मांगने जाते हैं उनको भगवान इच्छा देते हैं। लोग कहते तो हैं कि भगवान इतने कृपालु हैं, सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं, उनको भगवान वैसी नजर आने लगते हैं। सो भगवान कह रहे हैं कि जो जिस प्रकार मेरे पास आएगा, भजामियम मतलब जिस प्रकार की श्रद्धा उसको मेरे में होगी, जिस प्रकार से रुचि होगी, मैं उसी प्रकार से उसको अपने आप को उसके सामने प्रकट कर दूंगा। अगर वो मेरे पास आ रहा है समझ के कि मैं निराकार हूं, तो मैं निराकार के रूप में प्रकट कर दूंगा अपने आप को। सिंपल हो गया, खत्म, फिनिश, खत्म हो गया। जो मुझे जानना आता है कि मैं जो मुझे मेरे ही रूप में जानना चाहता है, मैं उसको अपने साक्षात श्याम सुंदर रूप में प्रकट कर दूंगा। भगवान यहां पे बता रहे हैं कि सब लोग मुझे जानना चाहते हैं, मगर प्रॉब्लम यह है कि आपकी इच्छा के अनुसार तुम उतना ही मुझे जान पाओगे, जिस प्रकार की इच्छा है उस इच्छा के परिमाण से ही तुम्हारी अनुभूति चलेगी। हर व्यक्ति को मैं पूरी तरह अनुभव नहीं हो सकता, इसलिए अगर भगवान को जानना है तो अपनी इच्छा को, अपनी रुचि को ठीक रखना पड़ेगा। किसी को परमात्मा के रूप में भगवान अनुभव होते हैं, किसी को निराकार रूप में, किसी को कुछ रूप में, किसी को कुछ रूप में, और वो कन्विंस्ड हो जाता है। मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। ओके, सो यू गॉट माय पॉइंट। इसलिए अपनी रुचि पे भी ध्यान रखना पड़ता है, अगर अपनी रुचि पे ध्यान नहीं रखेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए प्रमाणिक गुरु की जरूरत है। प्रमाणिक गुरु क्या करता है, एक तो भगवान का ज्ञान दे रहा है और आपके रुचि को बदल रहा है। भक्ति मतलब रुचि, रुचियों को बदल देता है। क्योंकि जो मान लीजिए जो भक्ति में नए लोग हैं, नहीं कनिष्ठ अधिकारी हैं, उनकी अपनी इच्छाएं नहीं होती, भगवान के पास तो आते हैं मगर अपनी इच्छाएं होती हैं उनकी। नहीं किसी को मुक्ति चाहिए, किसी को कुछ इच्छाएं चाहिए, होता ही है। तो प्रमाणिक गुरु और विधि विधान क्या करते हैं, वो हमारी रुचि को बदल देते हैं। भक्तियों ठाकुर यही लिख रहे हैं कि भक्ति मतलब रुचि, प्रीति। धीरे धीरे संसार से उठा के विधि विधान पालन करने से हमारी रुचि भगवान में चली जाती है और हमें भगवान यथारूप अनुभव हो जाते हैं। और फिर भगवान उसके आगे कह रहे हैं, मतलब भगवान अपना स्वभाव बता रहे हैं। यहां पर भगवान स्वभाव बता रहे हैं, भी देखो तुम जैसे मेरे पास आओगे मैं वैसे तुम्हारे सामने अपने को प्रकट कर दूंगा। ये मेरा स्वभाव है, जैसे शीशा होता है, शीशा देखा ना, अभी आप शीशे को मैं जैसा देखोगे आप वैसे ही दिखाई देगा। अब इसमें शीशे की गलती है, तो भगवान कह रहे मेरी गलती नहीं है इसमें, अगर तुम्हें उल्टा फुल्टा अनुभव हो रहा है वो मेरी गलती नहीं है, वो तुम्हारी गलती है। मैंने तो बोल दिया भाई मुझे जानना है सही प्रकार से, अगर तुम नहीं जान पाओ तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, अब प्रॉब्लम है तुम्हारी रुचि में, तुम्हारी इच्छाओं में, उसको ठीक करो पहले एक प्रॉपर गुरु के पास जाकर। और इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, कुछ लोग सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, अलग अलग तरीके की रुचि होती है लोगों की, फलस्वरूप है देवताओं की पूजा करते हैं। निसंदेह संसार में मनुष्य को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। भगवान ये कह रहे हैं कि अपनी इच्छाओं के ऐसे कुछ लोग मेरे को छोड़कर, कुछ भोगी लोग तो मुझे छोड़ ही देते हैं, कुछ लोग अपनी इच्छाओं से मुझे छोड़कर देवी देवताओं के पास जाते हैं। कांक्षता कर्मणाम सिद्धि, कर्मों में सिद्धि चाहते हैं लोग। सिद्धि का मतलब ऐसे प्रभुपाद लिख रहे हैं कि सक्सेस, अपने कर्मों में सक्सेस चाहते हैं। जनता यह देवता, और पूजा करते हैं किसकी, यह देवता। प्रभुपाद अपने पोपट में लिख रहे हैं कि यह देवता बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर। यह देवता क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह मतलब होता है संसार के, संसार में, यह मतलब संसार में, देवता मतलब देवता, इस संसार के देवताओं की पूजा करते हैं, देवी देवता इस संसार के लोग है ना, उनकी पूजा करते हैं। और क्षिप्रम ही मानुषे लोके, और उनको सिद्धिर भक्ति कर्मजा, उनको सिद्धि भी हो जाती है संसार में, उनको उनकी इच्छाएं पूरी भी हो जाती है देवी देवताओं से, मगर भगवान कह रहे हैं जान लो कि उनको वरदान देने की शक्ति कौन दे रहा है, मैं ही दे रहा हूं, ये भी मेरा स्वभाव है। प्रभुपाद यहां पे लिख रहे हैं बहुत सारी चीजें। वेल, इससे हमें क्या सीखने को मिल रहा है, प्रभुपाद यहां पे लिख रहे हैं, इससे हमें सीखने को मिल रहा है, भगवान हमें समझा रहे हैं कि मैं ही एकमात्र परमेश्वर हूं और सभी देवताओं को इस भौतिक जगत का प्रबंध करने के लिए शक्तियां प्राप्त कराता हूं। भगवान अपने बारे में बता रहे हैं ना, स्वभाव के बारे में भगवान कह रहे हैं कि देखो तुम देवताओं से मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा, मगर मैं उनका भी कंट्रोलर हूं, मैं ही परमेश्वर हूं। एक्चुअली पता है भगवान क्या कर रहे हैं यहां पर, भगवान यहां पर एक तीर से दो निशाने चला रहे हैं, अपना स्वभाव भी बता रहे हैं और ये भी साथ साथ बता रहे हैं कि इस संसार में लोग भटक जाते हैं, है नहीं, अलग अलग लोग चीजें अलग अलग लोग करने लगते हैं, और अपने बारे में बताने वाला भी मैं हूं और भटकाने वाला भी मैं ही हूं, ये भगवान बता रहे हैं अपना स्वभाव। इसलिए भगवान को समझना बहुत मुश्किल है। आप कहोगे भाई ठीक है, आपने गीता बोली हमें सही रास्ते पे लाने के लिए, अब आप भटका भी रहे नहीं, और जो देवी देवता जो फल जो हम चाहते हैं देवी देवताओं से फल, वो कह रहे हैं भगवान कह रहे हैं मैं ही देता हूं, अब क्यों दे रहे हैं भाई, लोग तो भटक जाएंगे। या कोई भगवान को निराकार के रूप में जानना चाहता है, भगवान अपने को निराकार रूप में प्रकट कर देते हैं। भगवान लिख रहे हैं यहां पर कि भगवान उस निराकार में अपने उस व्यक्ति को लीन करके उसकी सहायता कर देते हैं, सहायता मतलब उसकी इच्छा पूरी कर देते हैं। सो भगवान सब है, भगवान कृष्ण सूर्य साम, सूर्य का प्रकाश भी देते हैं, और जब सूर्य ढक जाता है तो छुप जाता है तो क्या हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। उस अंधेरे का कारण कौन है, सूरज ही हो गया ना, सूरज ही तो हो गया। तो ऐसे भगवान सब कारणों के कारण है, भगवान सही रास्ते पर चलाने वाले भी हैं और भटकाने वाले भी हैं, मगर भगवान उसके उत्तरदायी नहीं है। उसको उत्तरदायी कौन है, हम खुद हमारी रुचि के अनुसार भगवान ये सब करते रहते हैं। ठीक है, तुम्हें चाहिए तो ले लो, तुम्हें मैं चाहिए तो मैं अपने को प्रकट कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें सूरज चाहिए तो सूरज मिल जाएगा, तुम्हें अंधेरा चाहिए तो अंधेरा मिल जाएगा, मगर ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम्हारी चॉइस थी, ये मेरी चॉइस नहीं है, तुमने मांगा था मैंने तुम्हें दे दिया, ये भगवान का स्वभाव है। अभी भगवान बस बिल्कुल इसी पॉइंट पे आ जाएंगे, इसी पॉइंट पे आएंगे, अभी देखना क्या भगवान अपने बारे में क्यों बता रहे हैं, पता है ये सब अभी आ जाएगा, मगर ये समझ आ गया नहीं आ गया, भगवान सही रास्ते पर चलाने वाले भी हैं और भटकाने वाले भी हैं, मगर उत्तरदायी हम है, भगवान नहीं है उत्तरदायी, नहीं। ओके, ये भगवान का स्वभाव आ गया, नहीं भगवान का स्वभाव, जन्म कर्मा चे मैं दिव्य, मैंने बोला था तो दिव्य का मतलब क्या था, बताया था पिछली बार दिव्य का मतलब क्या बताया था मैंने, कि लो भूल ही गए। दिव्य मतलब वो भगवान के कर्म दिव्य है, मैंने बताया था मतलब भगवान के कर्म समझ नहीं सकते, ये नहीं कि जान नहीं सकते। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि भगवान भटकाने वाले भी हैं और सही चलाने वाले भी हैं, अब ये कैसे समझोगे आप, यही बात आ गई ना। वैसे पढ़ने से नजर नहीं आएगा कि भगवान ये बात कर रहे हैं, थीम वही चल रही है मगर भगवान किसी और ढंग से बोल रहे हैं, समझे नहीं समझे। ऐसे आप पढ़ोगे कि मैं कि लोग कोई देवताओं के पास जाता है और कोई कुछ लोग अपने सिद्धियों के लिए देवताओं, कुछ लोग निराकार की उपासना करते हैं, कुछ लोग परमात्मा की, मैं अपने आप प्रकट कर देता हूं। अब कहोगे ठीक है इसमें क्या है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, समझ इसलिए नहीं आएगा क्योंकि भगवान में विरोधी गुण है, समझे नहीं समझे। और विरोधी गुण क्या है कि भगवान सही रास्ते भी चला रहे हैं और गलत रास्ते पे भी चलने की प्रेरणा दे रहे हैं, ये तो विरोधी गुण हो गया, तभी भगवान कह रहे हैं दिव्य है। इसलिए संसार के लोगों को समझ नहीं आता, उनको कुछ भी समझ नहीं आता, वो तो बस ये सोचते हैं ना कि भगवान सही रास्ते पे चला रहे हैं। या भोगी लोग सोचते हैं कि देखो भगवान ही हमें करा रहे हैं भोग, नहीं यही कहते ना,
जैसे उसकी इच्छा
होगी ठीक है चलो। अब वैसे उनका भी लॉजिक ये होता है कि अब देखो हम गलत कर रहे हैं तो भगवान की इच्छा है, सही करेंगे तो वो भी ये कहते हैं कि भगवान भटकाने वाले हैं और सही रास्ते पे चलाने वाले हैं, वो भी ऐसा कहते हैं, हम भी ऐसा कह रहे हैं, मगर उनको समझ नहीं, वो किसी और ढंग से कह रहे हैं मगर हम सही ज्ञान से कह रहे हैं, इसलिए इस अध्याय का नाम दिव्य ज्ञान है। अभी भगवान आ जाएंगे इस पे, खुद ही समझा देंगे कि मैं क्यों ऐसा करता हूं, मगर वो तो हमने एक्सप्लेन कर दिया क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारी रुचि है नहीं, मगर पॉइंट पे आ जाएंगे भगवान आ जाएंगे। समझ लो क्या चल रहा है, समझ गए ना फिर क्या चल रहा है। ओके, प्रभुपाद पपट पे अपने लिख रहे हैं सारी चीजें। प्रभु भगवान अगले श्लोक में कह रहे हैं, 16वें श्लोक में, प्रकृति के तीन गुणों और उनके संबंध कर्म के अनुसार मेरे संबंध कर्म के अनुसार संबंध कर्म, 13वां श्लोक है, में मानव समाज के चार विभाग रचे गए हैं, यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूं किंतु तुम्हें जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय करता हूं। भगवान अपना स्वभाव बता रहे हैं, नहीं बता रहे हैं। भगवान ने एक और विरोधी चीज बता दी, मैं सबका सृष्टा हूं बट फिर भी मैं अकर्ता हूं, दिव्य कर्म हो गया नहीं हो गया, वो थीम वही चल रही है दिव्य कर्म, मैंने ही सारे गुण बनाए हैं, सारे गुण तीन गुणों से जो चार वर्ण आश्रम बनते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, मैंने सब कुछ किया है, व्यवस्था की है संसार में, प्रभुपाद सब कुछ लिख रहे हैं, मगर मैं सबका करता हूं, मैं करते हुए भी कुछ नहीं करता। अब ये भी बहुत अजीब सी बात है, दिव्य कर्म है, इसको समझने के लिए क्या चाहिए, दिव्य ज्ञान चाहिए, दृष्टि दिव्य ज्ञान। ओके, ये दूसरी चीज आ गई यहां पे। ओके, नमाम कर्माणि लिम्बन्ति न मे कर्म फलस्प्रिय, मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, न ही मैं कर्म फल की कामना करता हूं, जो मेरे संबंध से इस सत्य को जानता है वह कभी भी कर्म फलों के पास में नहीं बनता। शीला प्रभुपाद इसके पॉपट में लिख रहे हैं कि कहां लिख रहे हैं, अरे हिंदी में, ओके प्रभुपाद यहां पे लिख रहे हैं, यहां पे आप देखो एक्चुअली ये श्लोक कोट कर रहे हैं प्रभुपाद नीचे वेदांत सूत्र से, दूसरे ये क्या है 2.1 पॉइंट देख रहे हो आप, क्या कोट कर रहे हैं, हाँ ये क्या है 2.1.34 क्या होता है, क्या है भागवत तुम दिखाई दे रही है क्या है? तो क्या होता है 2.1.34 क्या है, श्रीमद भागवतम में 2.1.34 का है, तो इसका मतलब क्या है, दूसरा स्कंद पहला अध्याय, तो ये क्या है, हाँ तो क्या दूसरा स्कंद है, क्या क्या होता है, दूसरा अध्याय पहला पाद और 34th अधिकरण, ये इस तरह चलती है वेदांत सूत्र, मतलब दूसरा अध्याय वेदांत सूत्र में चार अध्याय होते हैं, चार अध्याय होते हैं और चार पाद होते हैं, मतलब हाँ मतलब उसको कह रहे चरण कह रहे हो, वैसे पाद कहते हैं चरण, मतलब चार अध्याय और चार चार सब चैप्टर्स, इसलिए वेदांत सूत्र का एक नाम होता है षोडश पाद। षोडश पाद हो गया ना, 4x4 16 पाद हो गए ना, इसलिए एक और नाम होता है वेदांत सूत्र का षोडश पाद। और फिर उन 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 जो पाद है उनके अंदर अधिकरण होते हैं, अधिकरण मतलब सेक्शंस, चैप्टर सब चैप्टर सेक्शंस, मॉडर्न लैंग्वेज में सुन लो। तो दूसरा अध्याय पहला पाद और 34th अधिकरण, उस अधिकरण का नाम है वैषम्य घृणय न सापेक्षवाद। उस सेक्शन का नाम है, सूत्र नहीं है ये, उस सेक्शन में फिर एक्सप्लेनेशन होगी, कई कई सूत्र होते हैं। तो ये पता होना चाहिए, नहीं अगर कोई आपसे आप गीता बता रहे हो, कोई मिल रहा है वो कहे भाई ये क्या लिखा है वेदांत सूत्र 2.1.34, ये तो मुझे पता ही नहीं, तो पढ़ क्या रहे हो फिर। सो क्या है उसमें, वैषम्य घृणय सापेक्षवाद, भगवान किसी भी जीव के प्रति पक्षपात नहीं करते, ये भगवान अपना स्वभाव बता रहे, पक्षपात नहीं करते, जीवात्मा अपने कर्मों के लिए स्वयं उत्तरदायी है, भगवान उसे प्रकृति तथा अर्थात बहिरंगा शक्ति के माध्यम से केवल सुविधा प्रदान करते हैं। जो व्यक्ति इस कर्म नियम की सारी बारीकियों से भली भांति अवगत होता है वह अपने कर्मों के फलों से प्रभावित नहीं होता। बात आ गई नहीं आ गई, भगवान यहां पे बता रहे हैं कि जो व्यक्ति मेरे इस दिव्य स्वभाव को समझ लेगा कि मैं लोगों को चलाता भी हूं और भटकाता भी हूं, मैं सब कुछ करता भी हूं और नहीं भी करता, और फिर भी किसी भी कर्म में बंधा नहीं हूं, जो ये समझ लेगा, जो मेरे दिव्य मेरे कर्म की दिव्यता को समझ लेगा वो भी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाए। ये इसलिए प्रभुपाद यहां पे कोट कर रहे हैं, वेदांत सूत्र का जो एक अधिकरण है ना, वैषम्य घृणय न सापेक्षवाद, उसमें यही डिस्कशन हो रही है, भगवान किसी का पक्षपात नहीं करते, डिस्कशन आप पढ़ोगे ना वेदांत सूत्र में, यही डिस्कशन हो रही है, भगवान पक्षपात नहीं करते। तो भैया भगवान पक्षपात नहीं करते, अगर भगवान पक्षपात नहीं करते तो भगवान देवताओं की मदद क्यों करते हैं, असुरों को क्यों मार देते हैं, है नहीं क्वेश्चन है नहीं बहुत बड़ा, क्यों मार देते हैं भाई, इसका इसको तो समझ आ रहा है। और भगवान अपने भक्तों को तो पक्षपात ही करते हैं, प्रहलाद की तो हेल्प करते रहे और हिरण्यकशिपु को मार दिया, ऐसे ये तो बड़ी सी बात है। सो उसी के लिए भगवान यहाँ पे भगवान ने श्लोक बोला कि देखो भाई ऐसा है कि मैं पक्षपात नहीं करता, मैं तो उनकी इच्छाओं के अनुसार उनको फल देता रहता हूँ, दैट्स ऑल फिनिश, और मैं कर्मों के नियमों में बनता नहीं। अब क्वेश्चन है कि भगवान सब कुछ करते हैं मगर फिर भी कर्मों में बनते क्यों नहीं बनते, कोई बताएगा क्यों नहीं बनते, भगवान करते रहे फिर क्यों नहीं बनेंगे। और वैसे प्रभुपाद पता क्या लिख रहे हैं, देख लो आगे लाइन, उसी लाइन के आगे पढ़ लो, दूसरे शब्दों में जो व्यक्ति भगवान के दिव्य स्वभाव से परिचित होता है वह कृष्ण भावना अमृत में अनुभवी होता है। आ गया नहीं आ गया, जो दिव्य स्वभाव से परिचित होता है, भगवान के दिव्य कर्मों से परिचित होता है वो भी अनुभवी होता है, अतः उस पर कर्म के नियम लागू नहीं होते। क्वेश्चन ये है कि भगवान सब कुछ करते हुए कर्मों में क्यों नहीं फंसते, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि भगवान फंसते हैं, कर्मकांडी लोग ये कहते हैं, कर्मकांडी समझते हो, कर्मकांडी या आर्य समाजी लोग ये कहते हैं कि भगवान ने कर्म किया और भगवान भी कर्मों के बंधन में फंस गए, जो जैन भी कहते हैं, भगवान कह रहे मैं तो नहीं होता। सो क्यों नहीं होते भगवान प्रभावित, ये बताओ मुझे। सो क्यों नहीं होते, क्योंकि प्रभुपाद एग्जांपल दे रहे हैं, आप पढ़ लो, पपट में कह रहे हैं, अब मैं कैसे बताऊं कहां कह रहे हैं। यहां से देखो आप, पहले पैराग्राफ में बीच में ही कहीं देख लो, बीच में पहले पैराग्राफ, इंद्रिय तृप्ति की उत्तर उत्तर उन्नति के लिए जीवात्मा इस संसार से कर्म में प्रवृत्त है और मृत्यु के बाद स्वर्ग सुख की कामना करती रहती है। मिल गया, मिला नहीं मिला, स्वयं में पूर्ण होके होने के कारण भगवान को तथाकथित स्वर्ग सुख का कोई आकर्षण नहीं होता। ये पहला कारण है कि भगवान किसी कर्म से प्रभावित नहीं होते, क्योंकि भगवान अपने में पूर्ण है। नमे कर्म फल स्प्रिया, लिख रहे कर्म फल की स्प्रिया नहीं होती। प्रभुपाद उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, स्वर्ग सुख से कोई आकर्षण नहीं होता। न मे कर्माणि लिम्पन्ति, मैं कर्म में लिप्त नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि न मे कर्म फले स्प्रिया, क्योंकि मुझे कर्म फल की स्प्रिया नहीं है। सीक्रेट बता रहे हैं भगवान, मैं इसलिए कर्मों में नहीं बनता क्योंकि मुझे कर्म फल की इच्छा नहीं, कर्म फल की कामना नहीं है मुझे। मगर अब ये पॉइंट है कि अगर अगर हमें भी कर्मों में लिप्त नहीं होना तो हमें भी कर्मफल की कामना, मगर पॉइंट ये है कि हम बिना कर्मफल की कामना के बिना कुछ काम नहीं कर सकते, प्रॉब्लम ये है। तो फिर क्या क्या करें, फिर करें तो क्या करें? हम तो पूर्ण नहीं है ना, भगवान तो पूर्ण है, ठीक है, उनको कर्मफल की कामना नहीं है, वो तो कर देंगे अपनी अहितु की कृपा से। अब हमने तो समझ लिया भगवान ऐसे नहीं, अब आप जिसकी भक्ति करोगे उसके गुण आप में आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे, है नहीं? भगवान कह रहे हैं जो ये समझ लेगा वो भी कर्मों से मुक्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर जिस स्वामी की पूजा करोगे उसके गुण धीरे धीरे आप में आ जाएंगे। अब हम क्या करें? अब ये हम भी कर्म, अब हम कहेंगे चलो भी ठीक है, हम भी कर्म में लिप्त नहीं होंगे अगर हम कर्म फल की कामना नहीं करेंगे, मगर हमारे में संभव ही नहीं है। तो कैसे करें, हम क्या करें? इसीलिए भगवान ने आगे श्लोक बोला है, कर्मण्येवाधि करस्ते। भगवान कह रहे हैं देखो कर्म फल की कामना नहीं करने की ट्रिक है। मेरे केस में तो सही है क्योंकि मैं पूर्ण हूं, तुम्हारे अब तुम मेरी भक्ति कर रहे हो, तुम देखोगे भी कृष्णा ऐसे हैं, तुम उसे सीखोगे ना, वहीं से सीख रहे हो ना सारी चीजें, तो वो कर्म में लिप्त नहीं होते क्योंकि कर्मफल की कामना नहीं करते, तो मैं भी नहीं करूंगा कामना इसलिए लिप्त नहीं होगा। भगवान कह रहे हैं तुम्हारे केस में क्योंकि तुम अपूर्ण हो, तुम सेल्फ सेटिस्फाइड नहीं हो, इसलिए तुम क्या करो उस कर्म फल की कामना को हाँ मेरे लिए कर लो, उस कर्म को मुझे अर्पण कर दो, अपने लिए मत करो, तो तुम भी कर्मों से मुक्त जाओगे। समझ गए नहीं समझ गए? ये सारी चीजें प्रभुपाद इस पॉपर्ट में लिख रहे हैं, ध्यान से पढ़ो, लिख रहे हैं। ये तो एक कारण है, प्रभुपाद ने एक्सप्लेन कर दिया, वो पूर्ण है इसलिए कर्म में लिप्त नहीं होते, हो गया। अब दूसरा कारण बता रहे, स्वर्ग के देवता उनके द्वारा नियुक्त सेवक हैं, स्वामी कभी भी कर्मचारियों का सा निरस्तीय सुख नहीं चाहता। ऑफ कोर्स नहीं, कर्मचारियों का सुख थोड़ी ना चाहता बॉस, जो बॉस जो दे रहा है उन कर्मचारियों को जो फैसिलिटीज, वो तो उससे करोड़ों गुना ज्यादा फैसिलिटीज कर रहा है। तुम लोग लो ठीक है, मैं तो अपने बंगलों में जा रहा हूं। वह भौतिक प्रक्रिया प्रतिक्रियाओं से पृथक रहता है। प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं, पृथ्वी पर उगने वाली विभिन्न वनस्पतियों के उगने के लिए वर्षा उत्तरदायी नहीं है, यद्यपि वर्षा के बिना वनस्पति नहीं उग सकती। इसलिए भगवान लिप्त नहीं हो रहे क्योंकि भगवान पूर्ण है। न मे कर्माणि लिम्पन्ति, न माम कर्माणि लिम्पन्ति, न मे कर्म फला स्प्रिया। जो जानता है वो भी कर्मों के चक्कर से मुक्त हो जाएगा। क्यों मुक्त हो जाएगा? क्योंकि वो जानेगा वो भगवान, भगवान को किसी भी फल की इच्छा नहीं है और सारे कर्म करते हैं वो बनते नहीं, इसलिए मैं भी सारे कर्म करके सारे फल को किसको अर्पण कर दूंगा? भगवान को अर्पण कर दूंगा, मैं भी बनती हूँ, बस सिंपल हो गया, सिंपल सिंपल हो गया। तो विधान सूत्र में यही सब एक्सप्लेन्ड है, ये विधान सूत्र में एक्सप्लेनेशन जो उस अधिकरण में आ रहा है ना वो भगवान ने एक श्लोक में बोल दिया। भगवद गीता विधान सूत्र की कमेंट सर्व उपनिषद का, वो सारे उपनिषदों का सारी तो है, भगवान सारा विधान सूत्र बता रहे हैं इसमें। ओके सो इसलिए 15वें अध्याय में भगवान समराइज कर रहे हैं, प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरे दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया, एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्ह का अनुसरण करके अपने कर्तव्य पालन करो। तो इस श्लोक में पता है क्या आ रहा है, इस श्लोक में क्या आ रहा है, इस श्लोक में कोई बताएगा क्या 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 बताना चाहते हैं भगवान, क्या बता रहे?
प्राचीन काल से भी पहले कोई काल
नहीं है वो तो ठीक है, प्रभुपाद अपने पर्पट में लिख रहे हैं, देख लो प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं यहाँ पर। प्रभुपाद लिख रहे हैं देखो कृष्ण, मतलब अब इस पैराग्राफ में अब देख लो, अब बीच में लाइन है, कृष्ण भावना अमृत के कार्यों से विमुख होकर आया नहीं आया दिखाई दे गया, एकांत में बैठकर कृष्ण भावना अमृत का प्रदर्शन करना कृष्ण के लिए कार्य में रत होने की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद इससे पहले कह रहे हैं कि अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध से भागना चाहता था, नहीं है नहीं, क्या लेने के लिए, ज्ञान। अर्जुन ने कहा भगवान ठीक है मैं छोड़ दूंगा और मैं जंगल में जाकर ज्ञान लूंगा। भगवान ने कहा कैसा ज्ञान लोगे? अर्जुन कह रहा है भगवान मैं वेदांत सूत्र पढ़ूंगा, कोट हुआ है ना, मैं पढ़ूंगा और आपको समझूंगा, और क्या जीवन का लक्ष्य, मैं समझूंगा कि आप कैसे करते भी हैं नहीं भी करते, आप कैसे और कहता नहीं और करते भी हैं नहीं भी करते, और क्या स्वभाव था, आप भटकाते भी हैं और चलाते भी हैं, अब मैं समझूंगा, पहले कुछ पढ़ तो लूं, मतलब ज्यादा अच्छा आपको समझूंगा, खून खराबा क्या है। भगवान कह रहे हैं स्टूपिड, तुम बेवकूफ हो, अपनी वेदांत सूत्र साइड में रखो, नॉनसेंस, तो अभी लड़ो। तो भगवान बता रहे हैं यहां पर, इससे पहले भगवान अर्जुन का ही दे रहे हैं, किंतु भगवान ने कुरुक्षेत्र में कार्य से विमुख होने की अर्जुन की इच्छा समर्थ नहीं की, आवश्यकता है बात की है कि यह जाना जाए कि किस तरह कर्म किया जाए। कृष्ण भावनामृत में कार्य से विमुख होकर एकांत में बैठकर कृष्ण भावनामृत का प्रश्न करना कृष्ण के लिए कार्य में रत होने की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है। यहां पर अर्जुन को सलाह दी जा रही है कि भगवान के अन्य पूर्व शिष्यों या तथा सूर्यदेव विवस्वान के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए कृष्ण भावना भावित में कार्य करें। भगवान यहां पे बता रहे हैं, देख रहे हो, एवं ज्ञातवा, एवं ज्ञातवा मतलब होता है जानकर, जानकर क्या करो, बैठ मत जाओ, बैठो मत, कृतम कर्म, कर्म करो, साथ साथ नॉलेज लो और मेरे लिए सेवा करो। भगवान इस श्लोक में ज्ञान और कर्म को मिला रहे हैं, नहीं यही बताया था ना, भक्ति योग में शुद्ध ज्ञानियों का कर्मयोग साथ में चलता है नहीं, भक्ति का ही अंग है ना, सो मेरे को समझो भी और समझ के मेरी सेवा करो, यही चल रहा है। अब मगर अर्जुन इसको समझ नहीं पाएगा, अर्जुन कंफ्यूज, अभी भी कंफ्यूज रहेगा कि भगवान आप एक तरफ ज्ञान लेने को कह रहे हो, एक तरफ काम करने को कह रहे हो, बैलेंस करना मुश्किल नहीं होता? कुछ कुछ भक्त कहते हैं यार हम तो पढ़ेंगे, कुछ कहते हैं हम सेवा करेंगे, यही कहते हैं ना, कहते हैं पढ़ने का टाइम नहीं, हम सेवा करेंगे, अब हम सेवा करेंगे यार, पढ़ना वढ़ना तो क्या, कुछ लोग कहते हैं बिना पढ़े क्या तुम कैसे चलोगे, पहले पढ़ते हैं, हम कह रहे हैं स्टूपिड दोनों साथ में चलाओ, क्योंकि मैंने बताया था बिना कर्मियों के ज्ञानियों की क्या नहीं होती, तुष्टि नहीं होती, तुष्टि, और बिना ज्ञानियों के कर्मियों की पुष्टि नहीं होती, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड। बिना कर्मियों के ज्ञान योग, ज्ञान योग में विज्ञान अनुभव नहीं आता, ज्ञान अनुभव में बदलता, और बिना ज्ञानियों के कर्मयोग की पुष्टि नहीं होगी। कर्मयोग आप करते रहोगे मगर वो अपना फल नहीं देगा, पुष्टि मतलब कर्मयोग अपना फल नहीं देता, आप नहीं पहुंच पाओगे वहां तक। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं दोनों करो, कृतम पूर्वैरपि मुमुक्षुभि, और क्यों, जैसे पहले के लोगों ने किया है और मुक्ति पा गए हैं, वो मुमुक्षुभि इसलिए शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, वो मुक्ति पा चुके हैं, ऐसा करके मुक्ति पा चुके हैं। अगर तुम अपने मन से चलते रहोगे, केवल वेदांत सूत्र पढ़ रहे हो, केवल सेवा कर रहे हो बिना समझे, तो मुक्ति नहीं पा सकते, क्योंकि अगर बिना समझे, बिना मुझे समझे अगर तुम मेरी सेवा करोगे तो उसमें कहीं ना कहीं तुम्हारी इच्छाएं छुपी रहेंगी, अपनी आ जाएंगी, बिना समझे कर रहे हो ना, तो भोगी लोग यही तो कहते हैं, वही चलाने वाला है, वही भटकाने वाला है, सेवा भी करते हैं मगर क्योंकि भगवान को अच्छी तरह समझे नहीं, इसलिए इच्छाएं रहती हैं उनके हृदय में। और प्रभुपद यहां पे एक और चीज लिख रहे हैं, आप पीछे देखो, प्रभुपद ऐसे बहुत अजीब सी चीज लिख रहे हैं, बीच में लाइन मिल जाए तो देख लेना, मूर्ख व्यक्ति या कृष्ण भावना अमृत में नव दीक्षित, दिखाई दिया, हाँ। दिखाई दिया नहीं, दिखाई दिया सबको, यस या नहीं,
यस।
मूर्ख व्यक्ति या कृष्ण भावना में नव दीक्षित प्राय कृष्ण भावना अमृत का पूरा ज्ञान प्राप्त किए बिना कार्य में विरत होना चाहता है। प्रभुपाद नव दीक्षित लोगों को मूर्ख कह रहे, मतलब नियोफाइट्स, तो जरूरी नहीं है कि दीक्षा लेके भी आप दीक्षा लेना अच्छा है, मगर जरूरी नहीं कि दीक्षा लेके आप एडवांस कर जाओगे, हो सकता है मूर्ख ही रहो। नवदीक्षित लोग मूर्ख रहते हैं, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, वो लोग या तो ज्ञान नहीं लेते और सेवा करते रहते हैं, या सेवा फिर बिना ज्ञान लिए फिर छोड़ देते हैं, सेवा छोड़ देते हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहेंगे। मूर्ख जो व्यक्ति ऐसा है जिसको जो पढ़ता रहेगा पागलों की तरह और सेवा नहीं करेगा, वो मूर्ख है, वो नवदीक्षित है, उसको समझ ही नहीं आया कि एक्चुअल अल्टीमेट कृष्णा कॉन्शियसनेस क्या है, तो वो बेवकूफ है। वो समझ रहा है वो इंटेलिजेंट मगर है बेवकूफ वो, क्योंकि इसलिए शिला एक्चुअली मुझे भी पहले लगता था पहले ऐसे कि पढ़ो ये सब करो, मगर एक्चुअली अल्टीमेटली आपको समझ आएगा कि वो मैटर नहीं करेगा, मैटर ये करेगा कि आपने भगवान के लिए क्या किया है, कितना किया मरने से पहले। प्रभुपाद इसलिए बार बार बोलते थे कि डू समथिंग फॉर कृष्णा, कह रहे नहीं थे, और जितने भी गौड़िया मठ के लोग हैं वो समझ ही नहीं पाते थे कि प्रभुपाद कह क्या रहे हैं, मतलब डू समथिंग पढ़ना नहीं, मतलब इतनी सारी किताबें हैं वो पढ़ना है, भगवान ये नहीं कह रहे कि डू समथिंग के चक्कर में आप पढ़ो नहीं वो भी गड़बड़ है नहीं। एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म, जान कर क्या करो, कर्म करो, जान कर करो, मतलब जान कर मतलब वो नहीं जब वाला जानकर,
ज्ञान के साथ,
ज्ञान के साथ जान कर, सो दैट्स द आइडिया, उसको कंबाइन करो, कंबाइन करना बहुत जरूरी है। सो इसलिए दोनों का कॉम्बिनेशन जरूरी होता है, भगवान बता रहे हैं यहाँ पर। तो मूर्ख मत बने रहो, मूर्ख बने रहोगे तो या तो करते रहोगे या छोड़ दोगे, उसे चलता रहेगा और फिर कोई भी अनुभव नहीं आएगा, खराब हो जाएगा सिस्टम, भगवान को समझ नहीं पाओगे। तो पहले के लोगों ने ऐसे किया, प्रभुपाद ने ऐसे किया, भक्ति संदा ने ऐसे किया, भक्ति ठाकुर ने, सब ने ऐसे किया नहीं। कुरु कर्म एव तस्मात्तम पूर्वे पूर्वे पूर्वतरम कृतम, ऐसा करो और करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। पूर्वे पूर्वतरम कृतम, पूर्ववर्तियों द्वारा प्राचीन काल में संपन्न किया गया था, ऐसे तुम करते रहो। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान ने भगवत अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित करने के लिए बोली थी, है नहीं, सही बात है, मगर इसका मतलब नहीं कि भगवान की भगवान की भगवान अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं क्योंकि 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 उनका मतलब निकल रहा है, ऐसा नहीं था। युद्ध करने के लिए प्रेरणा नहीं दे रहे सिर्फ भगवान, भगवान हमें प्रेरणा दे रहे हैं अर्जुन के द्वारा कि देखो भगवान की सेवा करना बहुत जरूरी है, भगवत भक्ति कर्म करना बहुत जरूरी है ज्ञान के साथ साथ, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है नहीं, ठीक है। भगवान ने यहां पर अपना कंक्लूजन, अर्जुन को यह समझ नहीं आएगा, कंफ्यूज रहेगा, इसलिए पांचवा अध्याय भगवान को दोबारा बोलना पड़ेगा। पांचवा अध्याय में अर्जुन ने पूछा ना, अर्जुन ने पूछा था, भगवान ने शुरू किया था, अर्जुन ने पूछा भगवान कभी आप ज्ञान बोल रहे हो कभी कर्म कह रहे हो, है नहीं, उसका सॉल्यूशन भगवान ने यहां पे दे चुके हैं। भगवान एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म हो चुका है, मगर अर्जुन अभी कैच नहीं कर पाया, हो सकता है अर्जुन स्पेस आउट हो गया उस टाइम, कुछ और सोच रहा हो हो भी सकता है, उसको सुनाई नहीं दिया, देखो सोच रहा हो यार मैं लड़ाई कैसे करूंगा, फिर बाण कैसे चलाऊंगा, भगवान बोल के निकल गया ऐसी होता है नहीं क्लास में, हो सकता झपकी आ गई हो, भगवान ने बोल दिया उठा हो अचानक से, ऐसी होता है ना क्लास में, लोग सो जाते हैं फिर पूछते हैं, हमें क्वेश्चन पूछना है, हमें पूछो फिर जो एक्सप्लेन कर चुके हैं वही क्वेश्चन पूछते हैं, नहीं सो गया था वो। मगर अर्जुन ना सोया ना वो स्पेस आउट था, वरना अर्जुन को भगवान गीता नहीं बोलते। फिर भी अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा फिफ्थ चैप्टर में कंफ्यूज होके, क्यों? इसका मतलब यह है कि ये डिलेमा सॉल्व करना बहुत मुश्किल है, ये आसानी से सॉल्व नहीं होता, हम भी इस कंफ्यूजन में रहेंगे, बैलेंस नहीं कर पाएंगे, कभी या तो सेवा करते रहेंगे, पढ़ना कम कर देंगे, समझना कम कर देंगे भगवान को, अरे हाँ यार सेवा कर रहे हैं ना ठीक है, समझना वमझना क्या है, सेवा ही सब कुछ है, कभी पढ़ने बैठेंगे तो पढ़ते ही रहेंगे उसी में, बस सेवा खत्म सब कुछ। इसलिए बैलेंस, जिसने ये बैलेंस सीख लिया वो मुमुक्षु भी, वो मुक्त हो गया, बस वो करना मुश्किल होता है, वो कई लोगों को मिलता भी नहीं, वो पूरी भक्ति चलती रहती है, कहीं पूरा जीवन भी जाता है कृष्णा कॉन्शियसनेस में, उनको मिलता ही नहीं ये बैलेंस, नहीं मिलता। कुछ लोग बैलेंस करना ही नहीं चाहते, कुछ लोग करना ही नहीं चाहते, नवदीक्षित जो मतलब नव दीक्षित का मतलब ये नहीं होता कि जिसको 15 साल हो गए वो भी नव दीक्षित हो सकता है, अगर उसने कॉन्सेप्ट नहीं समझा तो। सो हमें वेदांत सूत्र पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है, हमें भगवद गीता और भागवतम पढ़ लो, उसमें सब कुछ है। मतलब वो अधिकरण जो अधिकरण जो इतने बड़े अधिकरण में भगवान ने एक्सप्लेन किया है ना, वो वेदांत सूत्र के 2.1.34 भगवान ने अपने 3 श्लोकों में बता दिया। अब या तो वो पढ़ लो या ये पढ़ लो, समझ लो, वो पढ़ना गलत नहीं है मगर कॉन्सेप्ट यही है। अब भगवान के अर्जुन ने कहा मैं वेदांत सूत्र पढ़ूंगा, भगवान ने कहा छोड़ यार तू, मैं तुझे 3 श्लोकों बता देता हूं समझ के, तू पहले लड़ तो सही है, ज्यादा जरूरी है, पढ़ने के चक्कर में लड़ाई छूट जाएगी, मर जाएगा तू, पढ़ते रहो। फिर भगवान कहेंगे तुमने क्या किया मेरे लिए, भगवान वेदांत सूत्र पढ़ा है, ठीक है भैया दोबारा जाओ वहां पे कुछ कर करो मेरे लिए। कर्मयोग ज्यादा ऊपर है ज्ञान योग से, बताया था मैंने कर्मयोग श्रेष्ठ है, अगर कुछ करेंगे नहीं भगवान के लिए तो कृपा नहीं मिलेगी, वो आपकी पढ़ाई है, आप समझ रहे हो, दैट्स अनदर थिंग, बट यू हैव टू अप्लाई इन द फील्ड। नहीं अगर आप प्रैक्टिस करते रहो बंदूक चलाने की, किसी युद्ध में ही नहीं गए तो क्या आपको वो कौन सा अवार्ड होता है, पद्मश्री होता है जब मर जाते हैं लोग, परम, तो आपको परमवीर चक्र मिल जाएगा। आप प्रैक्टिस कर रहे हो, बहुत सही निशाना लगाया और प्रैक्टिस में आपको गोली लग गई, आप मर गए, तो क्या परमवीर चक्र मिलेगा आपको, प्रैक्टिस करते करते मर रहे, देखो हु केयर्स फॉर दैट, युद्ध में मरना तब परमवीर चक्र मिलता है ना। सो आप पढ़ रहे हो वृंदावन में बैठ के, आपने पूरा वेदांत सूत्र पढ़ लिया, सारे संदर्भ पढ़ लिए, वाह वाह, अब मर गए तो क्या मिलेगा आपको, आपको परमवीर चक्र, आपको प्रेम मिलेगा, गोलोक मिलेगा भैया, आप प्रैक्टिस करते करते मरे हो आप, कोई गोलोक नहीं, कोई प्रेम नहीं, आप फील्ड में नहीं उतरे, पढ़ लो क्या हो गया इसका, मैं पढ़ना इसका मतलब गलत नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा, बट द पॉइंट इज प्रेफरेंसेस होती है लाइफ में, टाइम भी कम है, सोच लो, पता लगा वो पढ़ने के चक्कर में भगवान के लिए कुछ कर ही नहीं पाए, ये ध्यान रख लो बस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गलत नहीं है, अगर हिम्मत है तो पढ़ जाओ मगर सेवा में कॉम्प्रोमाइज मत करो। इसलिए प्रभुपाद ने बोला था, वो गिरिराज महाराज प्रभुपाद के पास आए थे, तो गिरिराज महाराज ने पूछा कि प्रभुपाद इतना मंदिर बन रहा है जुहू का, मैं मुझे तो पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा, तो प्रभुपाद ने पता क्या बोला था, प्रभुपाद ने बोला देखो तुम मंदिर बनाओ भगवान का, यही तुम्हारे लिए पढ़ना है। प्रभुपाद ने बोला, उन्होंने कहा प्रभुपाद मुझे पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा, प्रभुपाद ने कहा फिर कम सो, अगर तुम्हें इतने शौक है अच्छा है तो कम सो, कम खाओ मगर ये सेवा नहीं रुकेगी। अब जब मैंने पहली बार पढ़ा था ना तो मैं सोच रहा था यार, मतलब नए होते तो ऐसे ही सोचते हैं, सॉरी यार प्रभुपाद को तो अपना काम कराना है इसलिए इनकी बैंड बजा रहे हैं मतलब ठीक है मंदिर तो बनना ही है, अब मंदिर ये नहीं बनाएंगे तो कैसे बनेगा, तो ठीक है इनको रगड़ दो मतलब ऐसे विचार तो पहले तो आते ही ऐसा होता है और मंदिर में बहुत बार होता है, मतलब ये मैं नहीं बता रहा, मंदिर में कोई व्यक्ति बोलता है भी वहां ही सेवा करो ये करो, तो वो कहते हैं कि भैया आपने तो पढ़ लिया, हाँ मैं अब रगड़ रहे हो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अर्जुन भी सोच रहा है कि भगवान मुझे रगड़ रहे हो यार, यही सोच रहा है ना, यही तो सोच रहा है यार, आप युद्ध कराए जा रहे हो यार, आपको तो सब कुछ आता है और मतलब ये तो सब कुछ है, और मतलब मैं पढ़ना चाहता हूँ, आप मुझे रगड़ रहे हो, युद्ध करो, मैं मर गया फिर क्या होगा तो पहले पढ़ लूं मैं बात वही चल रही है सो ऐसा नहीं है, हम बेवकूफों की तरह सोच रहे हैं। फिर मुझे बाद में समझ आया कि एक्चुअली ऐसा नहीं है, तो मैं अब गीता में कर्मयोग हमेशा ज्ञान योग से श्रेष्ठ है। प्रभुपाद ने गिरिराज महाराज को बोला देखो अगर तुम पढ़ते पढ़ते मर गए तो तुम प्रैक्टिस करते करते मरे हो, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, अगर सेवा करते करते मरे, कुछ भगवान के लिए करके मर गए तो डेफिनेटली कुछ मिल जाएगा, चाहे तुम्हें ज्ञान भी ना हो कुछ तो मिल जाएगा, भगवान की कृपा मिल जाएगी और अच्छा बेनिफिट मिल जाएगा, यू विल बी गेनर। मगर अगर तुम पढ़ के एक सेवा करो, सोना बंद कर दो, सोना कम करो, खाना बंद करो, पढ़ लो, तो फिर तो भगवान की प्राप्ति हो गई। सो स्टेप्स ही हैं, भगवान ने बारहवें अध्याय में भी बताया है, नहीं है कि भी ज्ञान लो, ज्ञान से ज्यादा श्रेष्ठ है भगवान के लिए कर्मयोग, कर्मवादा श्रेष्ठ है, मतलब कर्मयोग से ज्यादा श्रेष्ठ है ज्ञान के साथ, ज्ञान योग के साथ कर्मयोग करना, समझ गए? तो अब आप देख लो, आप में क्या, आप किस कैलिबर के हो, क्या हिम्मत है, कितनी शक्ति है, कितना कम सो सकते हो, कितना कम क्या कर सकते हो, बट या बैलेंस कर लो, आपको कोई जुहू मंदिर बनाने को तो नहीं कह रहे, बट जो 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 सेवा वो तो करनी पड़ेगी। अब सेवा मतलब जो आपको दी गई है, अपने मन से नहीं बना रखी, वरना तो भीतर राग, वो राग हो गया ना, आपका अपना आइडिया है, जो दी गई है वो करनी है। अपने मन से तो आप कुछ भी कर लो, अपने मन से आप कहोगे मैं तो सेवा कर रहा हूँ। हमारे गुरु भाई थे, वो कह रहे थे कि देखो भी मैं तो पढ़ता हूँ, सेवा भी करता हूँ, क्या करते हो? ऐसा है कि मैं पूरे दिन सेंटर को साफ करता हूँ और फिर अपना पढ़ता हूँ, मैं सेवा भी कर रहा हूँ, पढ़ भी रहा हूँ, देखो तो ठीक है। तो नॉनसेंस है, क्योंकि वो अपने मन से तो आप कोई भी सेटल कर लोगे, जितना करना कर लोगे, जितना करना है मैं नहीं, वो राग है, जो ऑर्डर है वो करना है, नहीं You have to fulfill the order. और फिर उसके बाद बैलेंस करो अपना, तब परफेक्ट है। वो भगवान यहाँ पे सिखा रहे हैं। So this is ये श्लोक, I think answer है। ये श्लोक थर्ड फोर्थ फिफ्थ चैप्टर का आंसर है, ये आंसर है। और इसलिए प्रभुपाद अगले श्लोक के तात्पर्य में लिख रहे हैं, देख लो तात्पर्य का पहली लाइन है। मैं अगले श्लोक में नहीं जा रहा, मगर तात्पर्य बता रहा हूं मैं। कृष्ण भामरामृत में जो कर्म किया जाए वह पूर्ववर्ती प्रामाणिक भक्तों के आदर्श के अनुसार होना चाहिए, इसका निर्देश 15वें श्लोक में किया गया है। ऐसा कर्म स्वतंत्र क्यों नहीं होना चाहिए, इसकी व्याख्या अगले श्लोक में, वो इस श्लोक में बता रहे हैं, वो बात अलग है, मगर प्रभुपाद ने अगले श्लोक में बता दिया कि 15वें श्लोक में कैसे कर्मयोग किया जाता है ज्ञान योग के साथ मिलाकर, उसकी व्याख्या भगवान ने पिछले श्लोक में कह दी, अपना निष्कर्ष ले लिया, बस इसके आगे हम आगे बढ़ेंगे कल। ये एक सेक्शन खत्म हो गया है। हरे कृष्ण, कुछ पूछना कुछ कहना है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय।